समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नई सुबह की पहली किरण जब धरती को छूती है तो अपने साथ उम्मीद की एक नई रोशनी लेकर आती है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोल्ड पर कार्यक्रम आज सवेरे। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शगुन चोपड़ा। 6 मार्च की इस ताजा सुबह में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिन भर की प्रमुख खबरें, इतिहास के पन्नों से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं और उन महान व्यक्तित्वों की झलक जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर सुबह सिर्फ समय का बदलाव नहीं, एक नई समझ और नई ऊर्जा भी लेकर आती है।
How beautiful, Vaishnavi. Good morning. And to our listeners, good morning, good day, everybody. Namaskar. Well, this is our daily news magazine program, Aaj Savere. And yes, such a great description of the morning. We are delving into the freshness of the morning with this very fresh edition of our program, Aaj Savere. And yes, we'll give you the latest national, international news, Metro City updates. We'll also explore today's history. Today, it's 6th of March, 2026. We are beginning with the headlines.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृषि और ग्रामीण बदलाव पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस विषय के तहत 8 वेबिनार सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें 4 प्रमुख सेक्टर कृषि, पशुपालन और डेयरी, मत्स्य पालन और ग्रामीण आजीविका पर विचार विमर्श होगा। बजट पश्चात वेबिनार में उच्च मूल्य के कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके लिए काजू, नारियल, चंदन, अगरवुड, बादाम, अखरोट और चिलगोजे की आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी खेती पर विचार होगा। वेबिनार में एआई सक्षम कृषि, डिजिटल बुनियादी ढांचा, भारत विस्तार से उपलब्ध अवसरों पर भी चर्चा होगी।
Prime Minister Narendra Modi and Finland President Alexander Stubb have reiterated their commitment to the rule-based international order and multilateral cooperation with the UN at its core. The India-Finland joint statement following the state visit of President of Finland to India said that both the leaders affirmed the deep and enduring friendship between India and Finland, built on a foundation of mutual respect and the values of democracy and rule of law, as well as commitment to global peace, security and international law. The leaders agreed to elevate the India-Finland relations to a strategic partnership in digitalization and sustainability based on converging interests and mutual benefits. They underlined the importance of redoubling efforts to reach the sustainable development goals and the importance of global cooperation against the challenges of climate change and loss of biodiversity. Welcoming the landmark free trade agreement between India and the European Union concluded in the India-EU summit on 27th of January, both leaders acknowledged the immense and mutually beneficial opportunities for both parties of increased trade and investments, including for the India-Finland bilateral relationship. The joint statement said that Prime Minister Modi and the President of Finland called upon the business community to make use of the vast opportunities unleashed by the landmark India-EU FTA. They agreed that the aim should be to double the value of current trade between India and Finland by 2030. The leaders identified digital transformation. This includes new and emerging technologies such as 5G, 6G, high performance and quantum computing and artificial intelligence as priority areas where collaboration based on mutual trust and benefit can be strengthened. On sustainability, both leaders underlined the great potential in advancing clean energy solutions in areas such as low carbon transition, energy efficiency, biofuels, smart grids and green hydrogen. They highlighted the importance of cooperation in circular economy, sustainable water management and meteorology. The Finnish president extended his appreciation to India for hosting the next World Circular Economy Forum, the Finnish president did that, in the later part of 2026. It is a Finnish initiative providing a platform to enhance circular economy solutions and then bring together leading expertise in the search for new collaborative initiatives. The two leaders recognized the need to reform the UN system. In this context, they emphasized the importance of a comprehensive reform of the UN Security Council to make it more efficient, representative, inclusive and reflective of contemporary geopolitical realities. The President of Finland reiterated Finland's support for the permanent membership of India in a reformed UNSA.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्ति की है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का, जबकि तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल, जबकि सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पदभार दिया गया है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अब तमिलनाडु के राज्यपाल का पदभार संभालेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का, जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधु को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है।
The Central Board of Secondary Education, CBSE West Asian Region, has cancelled the class 10th exam scheduled from 7th to 11th of this month. According to CBSE, examinations of class 10th, which were scheduled on 2nd, 5th and 6th of this month, shall also stand cancelled. The mode of declaration of results for class 10th candidates in the Middle East will be notified separately in due course. The examination of class 12 scheduled on 7th of this month has been postponed. CBSE said that revised dates will be announced later. The board will review the situation tomorrow and issue appropriate directions regarding examinations scheduled from 9th March onwards. All class 12 students have been advised to remain in close contact with their schools and follow official announcements carefully. U.S. President Donald Trump has sacked Kristi Noem as the United States Secretary of Homeland Security and appointed Mark Wainmullen as her replacement, effective from March 31. Announcing the decision in a post on social media, Trump said Mullen would take over leadership of the Department of Homeland Security, while Noem would assume a new role as Special Envoy for the Shield of the Americas, a security initiative in the Western Hemisphere. The president described Mullen as a strong supporter of the administration's agenda. Mr. Trump said Mullen would prioritize border security and tackling illegal immigration and drug trafficking. He also highlighted Mullen's background as the only Native American in the Senate.
और अब बात खेलों की। भारत आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है।
High-scoring thriller, a nail-biting thriller.
बिल्कुल बिल्कुल शगुन। और कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दूसरे सेमीफाइनल के रोमांचक मुकाबले में इंडिया ने इंग्लैंड को 7 रन से हरा दिया। 254 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 246 रन बनाए। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 253 रन बनाए। संजू सैमसन ने 42 गेंद में शानदार 89 रन बनाए। शिवम दुबे ने 43 रन का योगदान दिया। इंग्लैंड के लिए जेकब बेथिल ने 105 रन जोड़े। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। रविवार को फाइनल में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।
कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए।
श्रोताओं, अब रुक करते हैं देश के प्रमुख महानगरों की ओर, जहां से आपको मिलेगी ताजा हलचल और वे अहम खबरें जो सीधे आपसे जुड़ी है। तो आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी ने कहा है कि दिल्ली का मास्टर प्लान 2041 जल्द ही लागू किया जाएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ एन सरवन कुमार के साथ हुई बैठक में श्री बिधोड़ी ने बताया कि इस मास्टर प्लान के आने से राजधानी की कई समस्याओं का हल निकलेगा। एक रिपोर्ट।
बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को आदेश दिए कि दक्षिण दिल्ली क्षेत्र के सभी डीडीए पार्कों को विकसित करने के साथ साथ सामुदायिक केंद्र को और बेहतर किया जाए। उन्होंने कहा कि बदरपुर क्षेत्र में नहर पार क्षेत्र के हरिनगर वार्ड, मीठापुर वार्ड और जैतपुर वार्ड को ओ जोन से हटाया जाएगा। इस दौरान श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि दक्षिण दिल्ली के तेखंड गाँव की दो कॉलोनियों में भी मालिकाना अधिकार देने और रजिस्ट्री का काम शुरू किया जाएगा, जिन्हें पहले ध्वस्त करने के आदेश दिए गए थे। बैठक में भाजपा विधायक करतार सिंह तंवर, गजेंद्र यादव और कुलदीप सोलंकी भी शामिल थे।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इस महीने की 21 तारीख को अन्वेषण नामक पहल की शुरुआत करेगा। ये पहल उन विद्यार्थियों के लिए है जो आईआईटी दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सोच रहे हैं। इस पहल के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के प्रतिभागियों को आईआईटी दिल्ली परिसर का दौरा करने और संकाय सदस्यों के साथ साथ वर्तमान विद्यार्थियों से मिलने तथा बातचीत करने का भी अवसर मिलेगा।
Now we are heading to Chennai, Vaishnavi. The Entrepreneurship Development and Innovation Institute, Chennai, will organize a training program from March 9th to 13th between 10 a.m. and 5 p.m. at its campus. The training will cover topics in metallurgy with a focus on gold and silver and explain industry concepts including the difference between carat and the other carat. Carat one, let's say that, it begins with K, and the other carat, it begins with C. So carat which begins with K, it's for gold, and carat with C, beginning with C, is for diamond and other gems. Also, methods for calculating gold purity, jewel assessment procedures. So participants will receive hands-on training in jewelry making techniques. They will also receive training for methods such as casting methods or filigree work, stone setting, instruction on hallmarking procedures and standards, assaying methods and touchstone testing practices. It will also be delivered by the experts. We are staying with Chennai actually. As Chennai metro ridership is around 3 to 3.2 lakh passengers every day, the state government has accorded in principle approval for the rollout of first and last mile connectivity services around phase 1 stations. Meanwhile, transport experts and commuters want this to be extended across all metro, suburban and MRTS stations and have stressed the need to create charging infrastructure in CMRL and suburban stations. In the initial phase, 11 key metro stations will be covered by a fleet of 220 feeder buses and vans, mostly electric, to plug last mile gaps and draw commuters away from private vehicles. The initiative has been named Metro at the doorstep.
अब चलते हैं भारत की औद्योगिक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र सरकार ने अमरावती में हनुमानगढ़ी मंदिर क्षेत्र के विकास के लिए 121 करोड़ रुपए की एक योजना को मंजूरी दी है। हनुमानगढ़ी के पर्यटन विकास से संबंधित कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुख्य आकर्षण रहने वाली हनुमान प्रतिमा के निर्माण को सही तरीके से और समय पर पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 17,671 वर्ग मीटर क्षेत्र में यज्ञ मंडप, एम्फी थियेटर, फूड मॉल, क्राफ्ट सेंटर, बहुउद्देशीय हॉल, प्रशासनिक भवन और हनुमान गैलरी जैसी विभिन्न सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने कोल्हापुर जिले के पन्हाला तालुका में स्थित श्री ज्योतिबा मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए संशोधित विकास योजना को भी मंजूरी दी है।
Well, Vaishnavi, now let's find out what's happening in Bengaluru. So, Kempegowda International Airport, Bengaluru, has been ranked the best airport at arrivals globally at the 2025 Airport Service Quality ASQ Awards presented by the Airports Council International. So this marks the fourth consecutive year this airport has received the honor. The award is based on real-time passenger feedback collected through surveys conducted under ACI's ASQ program, Airport Service Quality Program, a global benchmark for airport customer experience. We are staying with Bengaluru only. Maheshwar Rao, Chief Commissioner of the Greater Bengaluru Authority, directed officials of the Bengaluru West City Corporation to shift from the current manual register system to an online system from the next financial year during his inspection of the RR Nagar Zonal Office. He also instructed officials to complete ongoing office construction, maintain cleanliness, renovate the meeting hall and remove storage boxes from corridors.
उत्तर बंगाल की चाय के बारे में बात करते हैं. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने घोषणा की है कि ये नई व्यापार नीति के तहत उत्तर बंगाल की चाय की पहुंच को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ाने के लिए पहल की जाएगी. गुरुवार को जलपाईगुड़ी के पास स्थित डेंगू झार चाय बागान के दौरे के दौरान मंत्री ने उत्पादन प्रक्रिया का निरीक्षण किया और चाय बागान के श्रमिकों तथा छोटे स्तर के चाय उत्पादकों से बातचीत कर उनकी चुनौतियों को समझा. टी बोर्ड ऑफ इंडिया के सूत्रों के अनुसार श्री प्रसाद ने आश्वासन दिया कि सरकार छोटे किसानों द्वारा उत्पादित कच्ची चाय पत्तियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देगी.
इज इट ऑट दैट नाउ आई एम क्रेविंग अ टी, अ कप ऑफ टी, राइट?
जी,
वी विल हैव इट आफ्टर द शो.
बिल्कुल.
सो नाउ लेट्स हेड टू हैदराबाद स्ट्रीट. द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल्स एंड माइंस जी किशन रेड्डी इंस्पेक्टेड द प्रोग्रेस ऑफ ऑन गोइंग रीडेवलपमेंट वर्क्स एट हैदराबाद railway station yesterday. The union minister visited the construction sites at the station and took stock of the progress of redevelopmental works. He inspected the station building works, basement parking, circulating area. He also reviewed the safety measures being undertaken at the work site.
Aur shrotaon, ye the ab tak ke metro samachar. कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आप जानते हैं कि आज महानगरों में मौसम कैसा रहने वाला है. सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की.
जी.
राजधानी दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा. शहर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. मुंबई में भी आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है. और बात करें कोलकाता की तो आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.
इफ वी टॉक अबाउट चेन्नई, It is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees. Bengaluru, it is expected to have mainly clear sky. The minimum temperature was 19 degrees Celsius. Maximum will be around 32 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature, minimum temperature, will be around 22 degrees Celsius and maximum temperature will be around 36 degrees Celsius. Vaishnavi there.
जी, और बढ़ते हैं अब इतिहास की ओर और जानते हैं 6 मार्च के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में.
We'll take our listeners way back in time, Vaishnavi. Mm-hmm. In the year 1775, Raghunath Rao signed Treaty of Surat with British, ending the First Anglo-Maratha War. In 1915, Gandhi and Rabindranath Tagore met for the first time at Shantiniketan. In 1947, Churchill opposed troop withdrawal from India at London. In 1961 now, India's first financial daily, The Economic Times, started publication from Bombay, Mumbai.
और 1996 में इराक ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत ऑयल फॉर गुड प्रोग्राम यानी खाद्य के बदले तेल योजना को स्वीकार किया. इस योजना के अंतर्गत इराक को तेल बेचने की अनुमति दी गई ताकि वे अपने नागरिकों के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री और दवाइयां खरीद सके. और 6 मार्च 1902 को स्पेन की राजधानी मेड्रिड में फुटबॉल प्रेमियों के एक समूह ने मेड्रिड फुटबॉल क्लब की स्थापना की. यही क्लब आगे चलकर रियल मेड्रिड के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ. अपनी सफेद जर्सी के कारण लॉस ब्लैंकोस के नाम से पहचाने जाने वाला ये क्लब 20वीं सदी का सबसे सफल यूरोपीय फुटबॉल क्लब बना और आज भी विश्व फुटबॉल में अपना विशेष स्थान रखता है. और 2008 की बात करें तो 2008 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी ने जॉन मैकेन को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया था.
Now again we're going back in 1971. Well, 6 March 1971 witnessed Test debut of Sunil Gavaskar versus West Indies at Port of Spain. In 1990, India won Indira Gandhi Gold Cup hockey tournament.
और यहाँ से अब चलते हैं 2009 की और तो 2009 में भारतीय वायुसेना की प्रतिष्ठित लड़ाकू विमान MiG-23 ने करीब 3 दशकों तक देश की सेवा देने के बाद अपनी अंतिम उड़ान भरी. सोवियत संघ से प्राप्त ये विमान 1980 के दशक में भारतीय वायुसेना की ताकत का अहम हिस्सा रहा और कई रणनीतिक अभियानों में भी अपनी अहम भूमिका निभाई. तो ये थी 6 मार्च की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं. अब बात करते हैं उन महान व्यक्तित्वों की जिनकी आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है और जिन्होंने इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी. शुरुआत करते हैं अंबिका चक्रवर्ती से. स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो साहस, पराक्रम और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हैं. अंबिका चक्रवर्ती उन्हीं में से एक थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। अंबिका चक्रवर्ती बंगाल के क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेज शासन के खिलाफ हथियार उठाने और आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने में अहम भूमिका निभाई। 1920 के दशक में वे सूर्यसेन जैसे अग्रणी क्रांतिकारियों के साथ जुड़े और 1930 में चटगांव शस्त्रागार कांड का हिस्सा बने, जहां अंग्रेजों के हथियार भंडार पर हमला करके भारतीयों के मन में आजादी के लिए विश्वास जगाया। कई कठिन पड़ावों और कारावास का सामना करने के बाद भी वे उन्होंने अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं किया। आजादी के बाद वे राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहे। उनकी जीवन गाथा आज भी स्वतंत्रता की भावना को प्रेरणा देती है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय लोकतंत्र और राजनीतिक परंपरा की नींव में गहरा योगदान रखता है तो वे सच्चिदानंद सिन्हा है। आज सच्चिदानंद सिन्हा की पुण्यतिथि है। डॉक्टर सिन्हा एक प्रख्यात अधिवक्ता, पत्रकार, शिक्षाविद और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई की और लंबे समय तक उच्च न्यायालयों में वकालत की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वे सामाजिक आंदोलनों से जुड़े रहे और बाद में 1946 में पहली बार संविधान सभा की बैठक में अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुने गए। उनके विचार आज भी लोकतंत्र, न्याय और समाज के आदर्शों में प्रेरणा देते हैं।
Well, today, listeners, we're also remembering famed author Louisa May Alcott, famously known for Little Women. Well, she created colorful, relatable characters in 19th century novels. Her work introduced readers to educated, strong female heroines and other characters as well. So as a result, her writing style greatly impacted the literature, American literature precisely. Well, her father was a popular educator, Bronson Alcott, who believed that children should enjoy learning. Therefore, at an early age, she took to reading and writing. So, much like her novel, Little Women, she was one of four great daughters and she remained close with her sisters throughout her life, the Little Women she created. And, well, she took many jobs to help elevate financial struggles, working as teacher, washing laundry, and she then turned to writing for both emotional and financial support. Her first work, Sunlight, was published in a magazine and, well, it was really famous. And her book, a compilation of short stories, was published, her first book, in the year 1854. Well, when the Civil War started in 1861, she served as a nurse in a Union hospital. So her audience, it included both adults and children, and she also released many of her earlier works under the name A.M. Bernard.
आज पुण्यतिथि है भारत की भाषाई विविधता में राष्ट्रीय एकता और संपर्क की भूमिका निभाने वाले महान हिंदी प्रचारक मोटुरी सत्यनारायण की। उन्होंने हिंदी को सिर्फ भाषा नहीं बल्कि एकता के सूत्र के रूप में देखा। आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव से उठकर उन्होंने हिंदी प्रचार का व्यापक आंदोलन दक्षिण भारत तक पहुंचाया। गांधी जी के मार्गदर्शन में वे हिंदी प्रचार सभा से जुड़े और भाषा को साधारण लोगों तक पहुंचाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे संविधान सभा के सदस्य भी रहे और भारतीय संविधान में हिंदी के औपचारिक स्थान और भाषा नीति को मजबूती से आगे बढ़ाने में योगदान दिया। उन्हें हिंदी सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साथ ही उनके नाम पर डॉक्टर मोटुरी सत्यनारायण पुरस्कार भी स्थापित किया गया, जो विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रदान किया जाता है।
Well, Vaishnavi, now let's tell our listeners about a musician, well, a singer-songwriter, David John Gilmour, member of the rock band Pink Floyd. So he joined in 1967 then, and then shortly before the departure of the founder member, who was Syd Barrett, By the early 1980s, Pink Floyd had become one of the highest selling and most acclaimed acts. So following departure of other member, Pink Floyd continued under David Gilmour's leadership and then released so many studio albums. He has released 5 studio albums, David Gilmour, About Face, On an Island and many other, and achieved 3 number 1 solo albums on the UK albums chart and 6 with Pink Floyd. And then he also produced the 2 albums by the Dream Academy, which is credited for bringing the singer-songwriter to public attention, being, well, Kate Bush, basically. And then we have a song which he created in the early years. So let's listen into that. This is Julia Dream.
Sunlight bright upon my pillow, lighter than an eiderdown. Will she let the weeping willow wind its branches round? Julia
जब हिंदी सिनेमा की स्वर्णिम काल की बात होती है तो सिर्फ नायकों की नहीं बल्कि उनकी सहायक भूमिका निभाने वाले कलाकार भी उतने ही याद किए जाते हैं। शम्मी उनमें से एक थी। आज शम्मी की पुण्यतिथि है। उनका फिल्मी सफर 1949 में शुरू हुआ और उन्होंने अनगिनत फिल्मों में मजबूत चरित्रों को अपनी कलाकारी से जीवंत किया। शमी में कभी भी मुख्य भूमिका की भूख नहीं रही, फिर भी उन्होंने माँ, बहन, चाची जैसे किरदारों में अपनापन और भावनात्मक गहराई इतनी खूबसूरती से पेश की कि दर्शक उन्हें दिल से याद करते हैं। उनकी दोस्ती और सहयोगी रिश्ते फिल्मों और कलाकारों के बीच प्रतिष्ठित थे और उन्होंने अपने करियर में कई यादगार संवाद और दृश्य दिए।
Right, Vaishnavi, Shammi remained a sought-after actress with filmmakers when it came to, you know, comic roles, and especially in the period 1949 and 1969 to till 1969 as well. Her famous films, they include supporting actress, included in Dil Apna aur Preet Bharai, Half Ticket and Kooli No. 1 as well.
जी बिल्कुल, और शम्मी के अभिनय की मधुर छवि आज भी पर्दे पर जीवित है। आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं शम्मी जी की पहली फिल्म मल्हार का ये खूबसूरत गीत।
बड़े अरमानों से रखा है कलम तेरी कसम, वो बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम।
जुदा न कर सकेंगे हमको जमाने के सितम, वो जमाने के सितम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम।
आज रामशरण जोशी का जन्मदिन है। भारतीय पत्रकारिता में गंभीर विचार और सामाजिक सरोकार की जब बात होती है तो रामशरण जोशी का नाम सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने पत्रकारिता को केवल खबरों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे समाज और लोकतंत्र के आईने की तरह देखा। वे कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से जुड़े रहे और संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई। मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने लंबे समय तक अध्यापन किया और नई पीढ़ी के पत्रकारों को दिशा दी।
Well, today it's also actress Janhvi Kapoor's birthday. So over the last few years, Janhvi Kapoor has risen to prominence as one of the most exciting young talents. And let's talk about her expanding body of work. It's an ideal moment to reflect on some of her standout performances, one of the motivational real-life narratives in the uplifting biographical drama Janhvi Kapoor. Takes on the role of Indian Air Force officer Gunjan Saxena, one of the first female combat pilots in India. And there was an emotional connection between Gunjan and her encouraging father, which is portrayed by Pankaj Tripathi, and this became a standout aspect of the film. Her portrayal was praised for effectively conveying Gunjan Saxena's resolve and sensitivity.
दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो।
अब हम बात करेंगे मकरंद देशपांडे के बारे में। रंगमंच की गंभीरता और सिनेमा की विविधता दोनों में समान रूप से सक्रिय रहने वाले मकरंद देशपांडे भारतीय कला जगत के एक बहुआयामी कलाकार हैं। वे अभिनेता होने के साथ साथ लेखक और निर्देशक भी हैं। मुंबई के पृथ्वी थिएटर से जुड़कर उन्होंने कई प्रयोगधर्मी नाटकों की रचना और निर्देशन किया। उनके नाटकों में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विषयों की गहराई देखने को मिलती है। फिल्मों में उन्होंने अक्सर गंभीर, रहस्यमय और गहन चरित्रों को निभाया है। और श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए वैष्णवी और शगुन को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
Well, yes, we hope listeners you have a wonderful day ahead, and with that, thank you so much listeners for tuning in.
नमस्कार।